कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 8। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री निमिचंद जी ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी की जो संस्कृत टीका कन्नड़ लिपि में जो केशव वर्णी जी ने लिखी थी और उसका इन्होंने अपनी सरल भाषा में सम्यक ज्ञान चंडिका कर्मकांड नामक पुस्तक जो भंडारी भाषा में लिखी थी और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ अपना दूसरा अधिकार शुरू हुआ है और यहाँ हमने देखा कि 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रतीति आई है वाशिम से, उसका प्रश्न है कि बंध क्या होता है। सही प्रश्न है, क्योंकि वो बंध क्या है नहीं मालूम हो तो आगे पढ़कर क्या फायदा है। तो बंधना यानी क्या है, एक साथ दूसरे के साथ आकर जुड़ जाना। पर बंध ये क्या बात करते, दो भिन्न चीजें है परंतु अभी कुछ काल के लिए इकट्ठे आई हुई है, हमारी भाषा में चिपकी हुई है। जैसे आपने तेल लगाया या क्रीम लगाई और धूल में खेलने को चली गई तो क्या हो जाता है, धूल मिट्टी चिपक जाती है। तो क्या हुआ, मिट्टी का वो स्निग्ध जो है उसका क्या हुआ, बंद हो गया, उसके साथ चिपक गई, उसको कहेंगे बंद हुआ। तो ये जीव और कर्म क्या है, ये अनादि से ही बंधी हुई अवस्था है। यानी प्योर जीव जिसको कहेंगे वो कौन है, तो सिद्ध भगवान। वहां उनके कोई कर्म नहीं है, उनके कोई वहां बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा की अनुभूति की, अपने को ही जानते रहे। और वो कैसे हुआ, उनका प्योर हो गया जीव का जो द्रव्य, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य इटसेल्फ रह गया केवल। तो उनके कोई बंधन नहीं है, ना ही कोई सत्ता में पड़ा है, ना कोई उदय है, कर्मों का पूर्ण नाश हुआ है। और अभी संसारी जीवों का क्या चल रहा है कि बंधे हुए तो थे ही थे, उसमें से उदय आना है, छुटकर निकल जाना। तो कुछ कर्म तो जा रहे हैं उसको कहेंगे उदय, खिल रहे हैं, और कुछ कर्म जो नए उसके साथ आकर और मिल रहे हैं तो उसको कहेंगे उसका बंध हो रहा है। जब आत्मा का अनुभव करना है तो हम इससे अपनी दृष्टि अपने ज्ञान तो जानेगा कि यहाँ ऐसा जीव का ऐसा स्वरूप है, उसके ऐसे राग आदि परिणाम है, उसमें कर्म की ऐसी अवस्था है। ज्ञान तो सबको जानेगा, क्योंकि ज्ञान में स्व को भी और पर को जानने की अपनी स्वयं की योग्यता है। पर जहां हमें आत्मा का अनुभव करना है, जिसको दृष्टि का विषय कहते हैं, उसमें मात्र स्व को स्थान है, पर को वहां स्थान नहीं है। अभी उसका प्रोसेस अभी हम नहीं कहेंगे, गुरुदेव बहुत उसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो कहते कि ये जो बातें हैं, जो बंध है, तो ये बंध का पहले स्वरूप जानना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हमें बंध का भी अभाव करना है और जो ऑलरेडी बंधे हुए है उसका भी सत्ता में से नाश करना है। करना ये बात है, परंतु हम कर ही नहीं सकते, पहले ये नक्की करना है, क्योंकि हमारा कर्मों में कोई अधिकार नहीं है, वो परद्रव्य है, उसकी एक भी अवस्था को जीव कर नहीं सकता। तो आप कहेंगे बांधता तो है ना, और मोक्ष तो करता है ना, वो भी नहीं करता है। कथन तो आएगा ऐसा, क्योंकि ये कर्णानियोग के ग्रंथ है, कथन तो ऐसे ही आते हैं निमित्त के द्वारा, कि जीव ने कर्म को उपशमाया, जीव ने इतने कर्मों को बांधा, जीव ने कर्मों का इतना उसका जो आकर्षण किया, उसका निर्जरा की, ये कथन हो गए। पर ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, दो द्रव्यों का मिलकर जहाँ कथन होता है उसको व्यवहार नय का कथन कहते हैं। यथार्थता वस्तु स्थिति रियलिटी क्या है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं में परिणमित होता है, उसका पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, वैसे नक्की करना है। जीव अपने स्वयं में अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, कर्म अपनी योग्यता से अपने में परिणमित हो रहा है, परंतु यह निमित्त नैमित्तिक रूप से जो बातें हो रही उसके यहाँ ध्यान किया जाता है। ये पूरा हम पढ़ने के बाद नक्की करेंगे, इसमें से कर्म को हमने छुआ तक नहीं आज तक, है ना। तो क्योंकि इतना फिर बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ऐसा नहीं खाते हैं तो ऐसा खिलाना पड़ता है, नहीं समझते। जुदा जान लो, ये कोई किसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कि तुम नहीं मान रहे ना तो अधिक विस्तार से जानो तो और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। एक एक परमाणु जुदा अपने से भिन्न दिखेगा ना, ये कर्म भी जुदे है, शरीर के परमाणु भी जुदे है, और ये तेजस के परमाणु जुदे, परमाणु मात्र जुदे हमारे से, पर हमने क्या माना है, ये जो है ना शरीर रूप रचना हुई है मैं हूँ, और मैं बहुत दयालु हूँ, मैं दान आदि करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा इसने मान दिया। ये उसकी भूल है, ये भूल मिटाने के लिए इतना इतना डिटेल में जानेंगे तो ये भाषित हो रहा है कि अनंत परमाणु आते हैं जाते हैं, उसका उदय हो रहा है। रागादि जो है वो तो हमने देखा था यहाँ पर, वो कर्म के भाव है, कर्म का वो स्वरूप है रागादि उपजाना, हमने पढ़ा था ना पहली दूसरी गाथा में पढ़ा था। तो ये इसका हमें निर्णय करना है, भेद ज्ञान करना है, इसीलिए ये कार्यकारी है। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, बंध के बारे में कुछ नियम बता रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसके होता है हमने देखा था, अभी हमने 104 पेज पर पढ़ा था, सम्य दृष्टि के होता है। कौन से गुणस्थान तक, चौथे पांचवे छठे सातवें और आठवें के छठे भाग तक। पर उसका बंध का प्रारंभ कौन कर सकता है, तो उसके लिए एक कंडीशन है, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू करता है। तो बंध शुरू करता है तो कौन से गुणस्थान में, क्या आठवें में करता है, तो नहीं, शुरू करने वाला चौथे पांचवे छठे या सातवें। तो कहते तीर्थंकर के समोचरण में कौन कौन से गति के जीव आते हैं मालूम है, तीन गति। तो तीर्थंकर से करेंगे कि नहीं, तीर्थंकर का फार्मूल है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन देव तो करेंगे, हाँ देव नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य ही वो कर सकता है, ये कंडीशन है उसकी। तो कर्मभूमि का मनुष्य ही वो तीर्थंकर के केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन प्रारंभ करेगा, प्रारंभ की बात है ये, बात यहाँ शायद लिखी नहीं है। देखो यहाँ 105 नंबर के पेज पर आना। तो सम्यक दृष्टि भी तीन प्रकार के होते हैं, सम्यक तो तीन प्रकार के होते हैं, औक्षणिक सम्यक है, शौक्षणिक समित्व है और क्षायिक समित्व है। इनमें से कौन सा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है वो यहाँ लिखा है, हाँ अरे सब तीनों कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे नरक में जाने वाले तो शौक्षणिक वाले ही है ना, और प्रथम ऑप्शन में भी कर सकता है, द्वितीय ऑप्शन में भी कर सकता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, 93 की टीका 105 नंबर का पेज, प्रथम ऑप्शन समित्व में या अवशेष, द्वितीय ऑप्शन शौक्षणिक या क्षायिक समित्व में असंयत से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्रारंभ करता है, वह भी प्रत्यक्ष केवली या श्रुत केवली के चरणों के निकट ही करता है। वो प्रत्यक्ष की बात है, परोक्ष रूप से नहीं, उनके पादमूल में ऐसा भी कहेंगे, क्योंकि वहीं पर वो ज्ञान की इतनी निर्मलता और इतनी जिसको कहेंगे तीक्ष्णता हो सकती है। कौन नहीं, द्रव्य स्त्री नहीं करेगी, भाव से स्त्री करेगा, क्योंकि द्रव्य स्त्री करते हैं कि नहीं करते, समय ज्ञान चंद्रिका में तो आर्या स्त्री करती ऐसा लिखा है, परंतु अन्य ग्रंथों में उसका निषेध भी किया है। द्रव्य से स्त्री नहीं करते ऐसा है, तो भाव से स्त्री करते क्या है, जो पुरुष वेदी जीव है, यानी द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है या भाव से नपुंसक है, ऐसे जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, परंतु उस भाव में उसका उदय नहीं होगा। उदय किसका होगा, पुरुष वेदी को ही उसका उदय होगा, पुरुष द्रव्य से तो पुरुष है ही है, भाव से भी जो पुरुष होते हैं उन्हीं को उसका उदय होगा। आहार शरीर और अंगोपांग के बारे में भी ऐसा ही है। आहार शरीर कौन से बनाएंगे? मुनिराज तो बनाते हैं, परंतु जिनका भाव वेद पुरुष है वे ही बना सकते हैं। भाव वेद जिनका स्त्री है नपुसक है, ऐसे हो सकता है? नवे गुण स्थान तक हो सकता है भाव से स्त्री या नपुसक, मोक्ष भी जा सकते हैं, परंतु वो उस भाव में तीर्थंकर नहीं हो सकते, वो आहार शरीर नहीं बना सकते, ऐसे कुछ नियम है विशेष। आपका प्रश्न है कि उपशमिक समय प्रथम उपशम का पूरा काल उपशम यानी शुद्ध उपयोग का काल है ना? नहीं, तीन करण परिणाम में तो शुद्ध उपयोग उसने स्टार्ट कर ही दिया था, आत्मसन्मुख हुआ था, उस पर अपनी चर्चा भी हुई थी। करण परिणाम है तो वहां तो उसने तो विषय कर दिया था, पर तो अंतर्मूल तक जानते रहा तब उसको समय तो हुआ। तो शुरुआत में गुण संक्रमण का जल काल के नियम में आता है, शुरुआत के एक अंतर्मूल जिसमें गुणित प्रमाण में मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होते हैं, वहां विशुद्धि बहुत ज्यादा है। उसके बाद स्टडी डाउन हो जाती है, विद्या संक्रमण वगैरह शुरू होता है, तो वहां तो शुद्ध उपयोग से वो शुभ उपयोग में भी हो। ये हमारी द्रव्यानुयोग में कथन पद्धति शुद्ध उपयोग में, शुद्ध उपयोग में, परंतु वो जो अति विशुद्धि का जो बढ़ने का हुआ एकांत वृद्धि का काल तो अभी समाप्त हो गया, अभी तो उसको रेगुलर शुभ उपयोग भी लिया है। वहां तो उसको साता असाता का बंध भी लिया है, प्रथम उपशम के काल में भी, शुरुआत में नहीं था, करण परिणाम में तो उसको साता का हो रहा था, पर बाद में साता असाता का भी हो गया। अभी इसके लिए क्या बंध के थोड़े डिटेल्स जानेंगे ना तो इसका इसको निष्कर्ष रूप से निकाला सकते हैं, अभी इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए।
प्रथम उपशम संन्यास के काल में आहार विहार आदि की जानकारी
हो, देवों के तो विहार मान्य है प्रथम उपशम के काल में हो सकता है, अंतर्मूर्त है उसका काल इतना ही, वो तो करण परिणाम में नहीं है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से उसका कोई वर्णन नहीं आता, परंतु हम उसको डिजाइन कर सकते हैं बस, परंतु हम अपनी तरफ से उसके कोई नियम नहीं बनाएंगे, उसके बारे में हम बिल्कुल सोच सकते हैं, पर जो आगम में जो परिभाषा है, आगम में जो कोई लिखित रूप से है उसी को हमको स्वीकारना है, समझने के लिए अपनी भाषा में समझना बात अलग है, अपनी ओर से कोई नए नियम नहीं बनाना। कहीं कहीं वाक्य का इधर का उधर भी करने लगे ना तो भी उसका अर्थ बदल जाता है। अभी यहाँ शुद्ध केवल ही लिखा है, समय साल में एक अपेक्षा से शुद्ध केवल किसको सिद्ध किया है? चौथे गुण स्थान, वो वाली बात यहाँ नहीं लेना है। ये दिगंबर मुनिराज जो है बारह अंक के ज्ञानी है, उसी को शुद्ध केवल लिखे, यानी कहीं अपेक्षावश कथन है और कहीं कौन से, वो तो हमें समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है ना बंध का प्रारंभ करता है उसे कंपेयर, यहाँ प्रथमोपशम सम्यक को जुदा कहने का अभिप्राय है। कई आचार्यों का मत ऐसा है, प्रथमोपशम सम्यक का काल थोड़ा है, अंतर्मूर्त मात्र है, इसलिए यहाँ षोडश कारण भावना भाई नहीं जा सकती, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ नहीं है, इस अभिप्राय को सोचकर जुदा लिखा है, यानी वहां कर सकते हैं ऐसा लिख के स्पेसिफिकली उसकी बात यहाँ बताई।
तो फिर अन्य आचार्यों की अपेक्षा से वहां षोडश कारण भावना नहीं है तो फिर वहां पर शुभराज
देखो नहीं उनका ऐसा की छोटा काल है इतना कहना है, उसमें कुछ ये बात नहीं। अभी राग से सर्वथा तो रही थी नहीं ना अबुद्धिपूर्वी के भी, और बाद में तो शुद्धोपयोग पूरा काल शुद्धोपयोग का नहीं है, ये तो मैं कह रही हूँ, प्रथमोपशम का पूरा काल शुद्धोपयोग का काल नहीं है। देखो मनुष्य कहने का अभिप्राय यह है, अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि अन्य गति वाले जीवों के विशिष्ट विचार क्षोक्षमादि सामग्री का अभाव है। ये इंटेलिजेंस मनुष्यों में होगा, वो जो तत्व निर्णय की इतनी दृढ़ता पूर्वक जो है कि उससे कभी डिग न पाए इस तरह का निर्णय, इसलिए प्रारंभ तो मनुष्य में ही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तिर्यंच बिना तीन गतियों में पाया जाता है, क्योंकि पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो उसे प्रारंभ कहते हैं, समय से लेकर प्रति समय समय प्रबद्ध रूप बंधन है। एक समय में जितनी प्रकृतियां बांध रहा है, कभी सात कभी आठ कभी तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हुआ करे तो उत्कृष्टपने से अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष से हीन 2 करोड़ पूर्व अधिक 33 सागर प्रमाण काल तक बंध होता है। और केवली के निकट कहने का अभिप्राय यह है, अन्यत्र ऐसी विशुद्धि नहीं होती जिससे तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो। ये सब बातें उसमें यहाँ तो साक्षात कोई नेक्स्ट भाव में जाने वाले सौदर में जैसे इंद्र हो तो वो तीर्थंकर के पाद मूल में बांधेंगे कि नहीं तीर्थंकर प्रकृति, यदि पहले से नहीं बांधी हो तो नहीं कहते नहीं बांध सकते। मनुष्य ही कर्म भूमि का मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करता है। हाँ वो मरकर देव में जा सकता है, मरकर नरक में जा सकता है, तो कोई जो मरकर भोग भूमि में जाएगा कि नहीं जाएगा, शायिक वाला जा सकता है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नहीं। यानी जिस देखो भोग भूमि की आयु किसको बनती है, मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तीर्यन ही भोग भूमि की आयु बांधता है। जिसने मनुष्य आयु और तीर्यन आयु बांधी है ऐसा जो मनुष्य है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध नहीं सकता, वो क्षायिक हो सकता है क्योंकि क्षायिक लेकर भोग भूमि में जाने वाले जीव है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति बांध कर भोग भूमि में जाने वाला एक भी जीव नहीं होता, नरक में जा सकता है। पहले नरकायु बांधी हो, अभी श्रेणी के राजा ने तो पहले नरकायु बांधी, 7वें नरक की बांधी थी, फिर समय दृष्टि हुए तो नरकायु की और क्षायिक समय दृष्टि हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो 84,000 वर्ष की रहेगी आयु। तो मेरा प्रश्न है जब आयु घटी तो दूसरी बार उन्होंने आयु बांधी होगी तभी घटी कि नहीं घटी, आयु बंद 8 बार हो सकता है, फिर दोबारा आयु का बंद किया कि नहीं हमारा प्रश्न, क्यों नहीं
वो कभी भी हो सकता
है, होने दो ना, हमने वही तो दोबारा आयु बांधने में हो सकता है। अच्छा समय दृष्टि जीव नरकायु का बंद करेगा क्या? उन्होंने एक बार आयु बांधी है, नरकायु बांधी है, बाद में समय दृष्टि हुए है तो फिर उसने आयु का बंध नहीं किया क्योंकि जो आयु बंधी अभी उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ ऐसा हो सकता है किसी ने देवायु बांधी है और वो समय तो प्राप्त करे, कोई उसमें तो कोई ये नहीं, कोई भी आयु बांधे तो समय तो हो सकता है, परंतु फिर वो दोबारा देवायु का बंध कर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा? समय दृष्टि हुआ है या नहीं भी हुआ, मिथ्या दृष्टि है, एक बार देवायु का बंध किया दूसरी बार भी कर सकता है, 8 बार मिलकर भी कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पर समय दृष्टि होने के बाद, मनुष्य समय दृष्टि होने के बाद अभी वो नरकायु का तीर्यायु का मनुष्यायु का बंध नहीं करेगा, ये कहना चाहते हैं। मिथ्या दृष्टि है तब चारों आयुओं का बंध हो सकता है, समय तो प्राप्त होने के बाद अगर कोई आयु का बंध करता है तो देवायु का ही करेगा, मनुष्य की बात है ना। यानी हम पूर्व में कोई ऐसी घटना है उसको हम इस तरह से अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये क्या क्या कितनी आयु तीर्थंकर प्रकृति का बंध लगातार कितने काल तक कोई बन सकता है, किसके कैसे डिराइव किया उन्होंने? देखो जिस भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू की ऐसा मनुष्य सोचना करोड़ पूर्व की आयु वाला, 8 वर्ष के बाद वो समय के साथ जन्मा हो या बाद में किया हो कोई डजंट मैटर, 8 वर्ष के बाद उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना शुरू किया, करोड़ पूर्व की आयु तक उसने बांधा, वो मुनि भी हुआ क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले तो मुनि हुए बिना नहीं जाएंगे, तो मुनि भी हुए और आयु के अंत तक तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहे, फिर सर्वार्थ सिद्धि में जाके उत्पन्न हुए। आप कहेंगे श्रेणी में मारना कि नहीं मरना? हाँ मर सकते, श्रेणी में मर सकते हैं, उनका बंधे उच्छित होने के पहले मरेंगे, श्रेणी भी चलेगी उपशम श्रेणी, 8वें मनस्थान में बंधे उच्छित होने के पहले मरकर सर्वार्थ सिद्धि में गए, यानी बंधे रुकाने बीच में क्योंकि हमको कंटिन्यूस बंधे चाहिए, वहां 33 सागर तक बांधते रहे हर समय, वहां से मनुष्य में आए फिर भी बांधते रहे, माँ के गर्भ में भी लोगों को लगता है गर्भ में कैसा शुद्ध उपयोग होता होगा, कैसा ज्ञान होता है, सब कुछ होता है वहां पे। अरे गर्भ का 2 महीने का बालक मरकर तीसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, तो उस योग्य शुभ उपयोग कर सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं कर सकता है क्या? ये हम भी कुछ कुछ अपनी मति कल्पना से बातें मानते हैं। तो मतिशुद्ध अवधि ज्ञान के साथ चेतन का जो जन्म आता है गर्भ में आता है उससे तो होगा यथा योग्य, तो फिर कब तक बांधता रहेगा? जब तक श्रेणी चढ़ेगा 8वें स्थान में विच्छिद्धि करेगा, शकुन श्रेणी चढ़कर 4वें में पहुंचेगा। देखो यहाँ लिखा है विशेषता, उसमें कुछ करेक्शन भी करना है ना। देखो ऊपर जो उत्कृष्ट काल होता है वो इस प्रकार घटित होता है, 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य ने 8 वर्ष और अंतर्मुख में सम्यक्त्व प्राप्त कर या जो सम्यक्त्व के साथ जन्मा है उसने वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंधन प्रारंभ किया। यह 8 वर्ष की कंडीशन है मनुष्य में। संयम धारण करके मर कर हाँ उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए या क्षायिक होने के लिए 8 वर्ष का नियम। मरकर कहा तो ये बंध विच्छिद्धि नहीं की उसने, यानी उपशम श्रेणी में भी बन सकता है परंतु वो बंध विच्छिद्धि के पहले मरकर, क्योंकि हमें कंटिन्यूस बंध चाहिए, ऐसा कंडीशन सोच रहे, पॉसिबिलिटी सोच रहे। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर का देव हुआ, वहां से चयकर करोड़ पूर्व की आयु वाला मनुष्य होकर यथा योग्य काल में संयम धारण कर आयु के अंत में यहाँ अंतर्मुहूर्त रखा है उसके बदले वर्ष पृथक कर लिखना, क्योंकि वो देखो तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी होगा ना वर्ष पृथक, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं, सामान्य केवल होना है तो अंतर्मुहूर्त में 13वां पार कर सकता है, इसको अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है तो उनके समोचरण की रचना वगैरह वो चलेगी। वर्ष पृथक रहने कुछ साल तक, जैसे महावीर भगवान की बात हमने देखी थी 12 वर्ष तक उनका चला, इस तरह से कुछ वर्षों तक, गिने चुने वर्षों तक शेष रहने पर उसको कहा वर्ष पृथक्व कहते हैं। पृथक्व का अर्थ कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं हजारों के लिए भी पृथक्व कहते हैं, और कहीं कहीं जो हम कहेंगे 3 से लेकर 9 तक उसको भी पृथक्व कहते हैं। वर्ष पृथक्व शेष रहने पर यह अंतर्मुहूर्त के बदले वर्ष पृथक्व करना, क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया तो 8वें गुणस्थान में उनकी बंदी की विच्छित्ति हुई। तब तक देखो कंटिन्यूस कितने काल तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हर समय किया। जो 4थे गुणस्थान में बांधने वाले की 6 लेशा होगी ना, कभी कृष्ण लेशा भी होगी, कभी क्या होगा, उस अवस्था में भी उसका बंध हो रहा है, उसके क्या अशुभ परिणाम नहीं होगी कभी बीच में, उस काल में भी बंध चल रहा है, ये कहना चाहिए। अपूर्व कर्म के 6वें भाग तक लगातार यानी निरंतर बंध होता रहा। अब ये तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता यहाँ बताई है। किसी का ऐसा कहना है कि जो तीर्थंकर का जीव होता है वो उपशम श्रेणी चढ़ के नहीं उतरता, ऐसा नहीं उतरता है, क्योंकि ये बात अंतर से सिद्ध होती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में अंतर कितना पड़ सकता है उससे ये बात सिद्ध होती है। अब उसके लिए विशेषता हम नहीं जाएंगे, पर ये बात सिद्ध की है, ये महाबंध में बात आती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये यहाँ गुणस्थान
के जो 8वें गुणस्थान में मतलब जिसकी बंध विच्छिद्धि अब तक नहीं हुई है, तो वहां तक मतलब अपने को कंटिन्यूस काल निकालना है।
हाँ।
और तीर्थंकर प्रकृति बंध विच्छिद्धि 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक मतलब 6वें भाग के बाद फिर इसकी बनेगी, तो उसके पहले पहले वो मरण को प्राप्त हो जाएगा कोई काल के, तो मतलब कि इसका 8वें गुणस्थान के पहले भाग में ही मरण होगा ना,
पहले भाग में होता
है, मरण नहीं होता है बाद में होगा,
पर 6वें भाग में बंध विच्छिद्धि है तो 6वें भाग तक बंधन है,
6वें भाग तक
बंधन है, 7वें भाग में बंधन नहीं है, तो 6वें भाग के अंत समय में भी मर सकता है।
बरोबर,
यहाँ पर भी बंधे देव में जाते हैं वहाँ पर भी बंधे।
अब 6वें, लेकिन जब श्रेणी चढ़ते तो 8वें गुणस्थान के शुरुआत में तो मरण नहीं होता है ना,
नहीं होता ना, शुरुआत में कहाँ मरण करा है, 6वें भाग में मरण करा है, मरकर सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले की बात है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की बात कर रहे हैं ना।
हाँ तो 6वें भाग पहले पहले ही वो मरण कर लेगा, ऐसा आपका कहना है?
पहले भाग में जहाँ निद्रा प्रशला की बंध विच्छिद्धि होती वहाँ किसी का मरण हो नहीं सकता, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा भाग आया छठे भाग में भी बंद कर रहा है, छठे भाग के अंतिम समय तक बंद है, सातवें भाग शुरू हुआ तो बंद नहीं है, तो बंद नहीं है अवस्था आने के पहले उसका मरण हुआ, ये कहना है। वो सारा अंतर्मुख में है, पहले भाग में मरण नहीं, आठवें के जो सात भाग किए हैं उसके चढ़ने वाले के पहले भाग में मरण नहीं। तो बीच में बंद रुक गया ना, हमको बंद नहीं रुकना है। देखो ये ऐसी बातें होती ना, हम सोचते हैं ना कोई एंगल्स लिख हो जाते हैं, इसलिए इतने सभी एंगल से सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ भी ऐसी चर्चा रहती है, चालू रहती है, कोई कोई ऐसे लेशा के प्रकरण में, योग के प्रकरण में, ऐसे ऐसे एक अपेक्षा पकड़ो तो दूसरी छूट जाती है। महाबंध में आई ना बात, बंद रुक जाता है इनका। ये ऐसा सवाल है, मैंने अभी क्या बताया, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला, या अभी बांध कर भी आया है मनुष्य में, देव में से आया है, या हमारे जो पुरुष तीर्थंकरों में से है, तो क्या उन्होंने उसी भाव में अभी तीर्थंकर होने वाले ना, तीर्थंकर कब हो गए, शपक श्रेणी चढ़कर आठवें में पहुंचेगी तब, तो क्या उसके पहले वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकते हैं? हाँ उतर सकते हैं। तो उपशम श्रेणी चढ़ते समय उसकी बंद भी छुट्टी हो जाएगी ना, हो जाएगी, आठवें तक बंद है, फिर आठवें के सातवें भाग में, नौवें दसवें ग्यारहवें फिर दसवें नौवें आठवें तक बंद नहीं था, फिर वो बंद शुरू हो गया, तो बीच में अंतर्मुख तक रुक गया वो, फिर बंद चालू हो गया। ऐसे बंद रुक कर फिर दोबारा चालू हो जाए, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले में भी हो सकता है। उसको कहते उसका अंतर, यानी वो शादी बंद बन, उसका शादी बंद कब हो सकता है, जब पहली बार बांधा तब शादी हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का शादी बंद कब हो सकता है, बांधना चालू किया तब हो सकता है, या उक्षम शनि उतर कर तब हो सकता है, समझ ना, दो बार उसका शादी हो सकता है। नरक नहीं, मैं क्या, मैं उसके आगे की बात करते कि दो शादी में कितना अंतर हो सकता है, दो शादी में उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर, एक बार शादी किया कब, बंद प्रारंभ किया तब वो बांधता रहा, करोड़ पूर्व की आयु वाला वही नियम लेते, आठ वर्ष वाला उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया और फिर आयु के अंत में उषम श्रेणी चढ़ा और छठे भाग के पहले पहले मरकर सर्व सिद्धि में गए, वहां 33 सागर तक, मैंने शादी कब की थी, जब बांधना शुरू किया तब शादी की, फिर यहाँ करोड़ पूर्व, आठ वर्ष माइनस करोड़ पूर्व, फिर 33 सागर, फिर यहाँ करोड़ पूर्व वाले में जन्म लिया और वहां पर उसने संयम वगैरह धारण किया और क्षपक श्रेणी चढ़ने के पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, तब फिर उसने शादी किया। इसी से सिद्ध होता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, ये बात महाबंध में आ गई है। उसमें इतना बड़ा लंबा अंतर, मैंने बोला कि ये आगम पढ़ने के थोड़े तरीके, काल अंतर वगैरह के द्वारा बहुत सारी बातें सिद्ध हो सकती है।
कितने बार शादी
होगा, वो पहले शादी हुआ है, दो बार भी उपशम श्रेणी चढ़ के उतर सकता है, परंतु वो तो मिनिमम अंतर घटित करने के लिए हम दो बार करेंगे तो अंतर मुक्त वाला अंतर बीच में रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम गुणस्थानों में बंद विच्छित्ति देखने जा रहे हैं। विच्छित्ति का अर्थ है उस गुणस्थान तक वो बनती है, आगे के गुणस्थानों में नहीं बनती। जैसे ध्रुवबंदी में तो हो ही सकता है, जो ध्रुवबंदी प्रतिपक्ष वाली जो है ना, उसमें भी ऐसा हो सकता है, जैसे साता भी बनती है कभी असाता बनती है, पर ऐसा हो सकता है कि असाता का बंध विशिष्ट गुणस्थान तक ही होगा, ऊपर होगा ही नहीं, तो उसको कहेंगे उसकी बंध विच्छित्ति, तो ऊपर के गुणस्थान में केवल साता का ही बंध होगा, ये भी हो सकता है। वो कौन से गुणस्थान में कितनी और कौन सी प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती है उसकी अभी चर्चा चलेगी, पहले उसको समझाएंगे, उनकी भाषा में पढ़ेंगे हम। देखो 105 नंबर का पेज है, नीचे की लाइन लास्ट, वहां लिखा है ना, गुणस्थानों में बंध की विच्छित्ति बंध और अबंध कहते हैं। देखो बंध यानी कितनी प्रकृति वहां बनती है, उसको कहा कहेंगे बंध प्रकृति, विच्छित्ति किसको कहेंगे, वहां बनने वाली नहीं है परंतु वो नेक्स्ट आगे भी गुणस्थानों में नहीं बनेगी, उसको कहेंगे वो विच्छित्ति वाले प्रभु। तो वो कितनी है उसकी संख्या बताएंगे। अबंध का अर्थ क्या है, आगे के गुणस्थानों में बन रही थी, बन सकती है, अभी नहीं बन रही है, उसको अबंध में गिनेंगे। जैसे पहले गुणस्थान में ना तीर्थंकर प्रकृति बनती है ना आहार द्वीप बनता है, तो उसको वहां अबंध प्रकृतियों में गिनेंगे। समझ नहीं ना, वो बनती है ऊपर के गुणस्थान में, समय दृष्टि के बनती है, तो उसको यहाँ अबंध में गिनेंगे। और पहले गुणस्थान में जो ऑलरेडी बनती है और जो यहाँ से आगे के गुणस्थानों में नहीं बनेगी, दूसरे में भी जो नहीं बनेगी, उसको क्या कहेंगे, ये पहले गुणस्थान की बंदे विच्छित्ति है। ऐसी 16 प्रकृतियां है जो मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बनती है, दूसरे में भी नहीं बनती, तीसरे चौथे आगे की तो सवाल ही नहीं। तो उन 16 प्रकृतियों को कहेंगे इनकी यहाँ बंद की विच्छित्ति हुई। ये कौन सी 16 है उसकी चर्चा करेंगे हम, पहले विच्छित्ति का अर्थ क्या है उसको समझना है। दूसरे गुणस्थान के बंद विच्छित्ति कैसी, वो पहले में भी बनती थी, दूसरे में भी बनती है, पर तो आगे तीसरे आदि में वो नहीं बनेगी, उसको कहेंगे दूसरे गुणस्थान की बंद विच्छित्ति। ये समझ में ना, ये तो किसको क्या कहना वो पहले ख्याल में। देखो अभी यहाँ तक
बंदेगी
बहुत 16 यहाँ बनती है, वो आगे नहीं बनेगी, ऐसी बनने वाली में से 16 नहीं बनेगी, ऐसा बनती। हाँ, और ये भी एक जीव की अपेक्षा नहीं बता रहे, अनेक जीवों की अपेक्षा कौन कौन सी प्रकृतियां बन सकती है उसकी बात है यहाँ, क्योंकि पहले गुणस्थान में बनने वाली जो है ना 120 हमारे बनने योग्य है, उसमें कीर्तनकर आहार भी पहले में नहीं बनती है, तो नाना जीवन की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो 117 बनने योग्य प्रकृतियां है। 117 के 17 एक जीव को एट ए टाइम बन देगी कि नहीं बन देगी, क्योंकि चार गति एट ए टाइम नहीं बन देगी, वो सब हमने देखी ना, प्रतिपक्ष वाली वो एट ए टाइम नहीं बन देगी, समझ में आती बात। तो एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, अलग अलग अनेक जीव जिसको नाना जीवन की अपेक्षा की, तो 117 बंध योग्य है, उसमें से 17 ऐसी प्रकृतियां हैं कि दूसरे गुणस्थान में वो नहीं बंधेगी, तो 117 जो बंध योग्य थी उसमें से उसको माइनस करेंगे, और जो अबंध वाली थी तीर्थंकर आहार भी तो दूसरे में भी नहीं बनती, तो 16 जो पहले में विच्छित्ति हुई वो दूसरे में नहीं बंधेगी, और जो पहले में 3 नहीं बनती थी वो भी नहीं बंधेगी, तो 16 और 3 19 नहीं बंधेगी वहां पर, ऐसा हिसाब चलेगा, वो अभी पढ़ेंगे तो क्या रह जाएगा। अभी जो हम पेज पढ़ रहे थे ना लास्ट लाइन 105 पेज पर पढ़ रहे थे लास्ट लाइन, देखो जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति कही हो, विच्छित्ति का अर्थ क्या है उसका, वहाँ बंद हो जाती, बंद नाश हो जाता, वो जो बंद की अपेक्षा विच्छित्ति कह रहे हो, वो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, उसमें से कुछ प्रकृतियां उदय में भी आ सकती, कुछ कहा मैंने, परंतु उनका बंध आगे नहीं होगा ये कहना चाहते, क्योंकि उदय की विच्छित्ति की पूरी लिस्ट अलग होगी, या अभी हम बंध की विच्छित्ति की बात कर रहे हैं, सत्व की विच्छित्ति अलग होगी, हाँ उदीर्णा की विच्छित्ति अलग होगी, ये पढ़ते पढ़ते अपनी विच्छित्ति हो जाती है। नहीं तो एक बात ये याद हो जाए ना, तो इतना उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है और पूरा गुणस्थानों का स्वरूप ख्याल में आ जाता है। अब आगे देखते 106 पेज पर, यानी उन प्रकृतियों का उस गुणस्थान के अंत समय तक बंध जानना, जो विच्छित्ति वाली है वो उस गुणस्थान में बंधने वाली है, आगे नहीं बनती, उसके ऊपर के गुणस्थानों में उन प्रकृतियों का बंध न जानना। पुनश्च जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बंध कहा हो उतनी प्रकृतियों का वहां बंध जानना, जैसे हम कहेंगे पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता है, तो बंध योग्य प्रकृतियां वहां कितनी है 117 पहले गुणस्थान में, सभी गुणस्थानों की अपेक्षा बंध योग्य के हम 120 प्रकृतियां टोटल बंध योग्य है, परंतु पहले गुणस्थान में बंध योग्य कितनी है तो 117 है, जो बंधने योग्य नहीं है ऐसी कौन सी है 3 है, और विच्छित्ति होने वाली कितनी, तो 16 है, उसको भी चर्चा करेंगे। पहले पहले गुणस्थान में जितना बंद कहा हो उसमें से वहीं पर जितनी विच्छित्ति कही हो उसे घटाने पर आगे आगे के गुणस्थानों में बंध का प्रमाण होता है। जैसे हमने देखा 117 बंध योग्य है, उसमें से वो 16 माइनस करो जिसकी उच्चति हुई, तो दूसरे गुणस्थान में कितने बंधेगी, 117 माइनस 16 101 बंधेगी, क्योंकि जो अबंध में गिनी थी 3 वो तो अबंध में ही गिननी है आगे चलकर। ख्याल में है ना बात। वहां यदि कोई विशेष प्रकृतियां आगे के गुणस्थानों में बंध योग्य होगी, जो हमने अभी तीर्थंकर और आहारक देखी बात, तो उन प्रकृतियों को पहले गुणस्थानों के बंध में से घटा देना तथा पश्चात जहां आ मिले वहां बंध में बढ़ा देना। 120 में हमने वो 3 को घटा दिया था, अब वो 3 को कहां ऐड करेंगे, चौथे में एक ही ऐड होगा और सातवें में 2 ऐड हो गए, क्योंकि जहां बनती है वहां ऐड करेंगे ना। चौथे से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है तो उसको हम चौथे में ऐड करेंगे, आहार भी सातवें आसन में बनती है तो वहां जाके उसको ऐड करेंगे। हमको नियम समझना है बस। पुनश्च जितनी प्रकृतियां बंध योग्य होती है उतनी प्रकृतियों में से जितनी प्रकृतियों का बंध कहा हो उतनी प्रकृतियां घटाने पर अवशेष जितनी प्रकृतियां रहेगी उतनी प्रकृतियां अबंध रूप जानी। एक ही बात है, जैसे 117 बंध योग्य है ना, और उसमें से
16
नहीं, पूरी टोटल 120 बंध योग्य थी और उसमें से वहां बंध योग्य, वहां उस गुणस्थान में कितनी बनती है, 117, तो अबंध में कितनी गिने, ये 3। हमने डायरेक्ट अबंध की बात की, अबंध गिने और हम बंध योग्य का हिसाब निकाल सकते हैं, ये उल्टा भी कर सकते हैं। अब प्रथम ही यानी सबसे पहले गुणस्थानों में विच्छित्ति कहते हैं, बाद में बंध और अबंध की बात करेंगे, पहले विच्छित्तियों को गिनाएंगे, पहले तो नंबर गिनाएंगे फिर प्रकृतियों को गिनाएंगे बाद में। देखो ये निखिल जी की टीका पढ़ते 106 पेज पर, टीका जो नीचे की 94 की, मिथ्या तो गुणस्थान में 16 प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति रूप होती है। इसका अर्थ क्या है, मिथ्या तो गुणस्थान में इन 16 का बंध है, मिथ्यात्व में तो इनका बंध है, सासादन आदि ऊपर के गुणस्थानों में इनका बंध नहीं है, इसी तरह सर्वत्र विच्छित्ति का स्वरूप जानना। तो पहले गुणस्थान में आपके पास भी चार्ट है, यहाँ पर भी है, ये गुणस्थान के नाम यहाँ लिखे हैं या नंबर 1, 2, 3, 4 और नीचे वहां विच्छित्ति होने वाले प्रकृतियों की संख्या बताएगी। तो पहले गुणस्थान में कितने लिखे, 16, दूसरे गुणस्थान में 25, तीसरे गुणस्थान में विच्छित्त नहीं है, जितनी बनती वहां चल रही, उसमें से कोई बंध से रुकी नहीं है, वहां अबंध में कुछ चली जाएगी, जैसे तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता, उसको वहां अबंध में गिनेंगे तो उसको विच्छित्त नहीं कहेंगे,
क्योंकि आगे हो सकता है,
क्योंकि वो चौथे गुणस्थान में आयु का बंध होगा फिर, इसलिए यहां उसको विच्छित्त किसकी है, तो किसी की नहीं है। चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियां विच्छित्ति रूप हो जाती, वो आगे चलकर नहीं बनेगी। पांचवे गुणस्थान में 4 प्रकृतियां, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 36 लिखे, यानी पहले भाग में निद्रा पटला 2, छठवें भाग में 30 प्रकृतियां और सातवें भाग में 4 प्रकृतियां, ये टोटल 36 यहां विच्छित्ति होती। नौवे गुणस्थान में 5, पांच यानी क्रम से एक 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 पुरुष वेद फिर क्रोध फिर मान फिर माने संज्वलन, वो 5। दसवें गुणस्थान में 16 प्रकृतियां जो बनती थी वो अभी नहीं बनेगी आगे, वो ज्ञानांदर्शन हो गए अंतराय हो गए। 11वें में बंध है परंतु विच्छित्ति नहीं है, क्योंकि सातावेद्य का बंध है पर वो बंध रुकता नहीं है। 12वें वाले को भी सातावेद्य का बंध है रुकता नहीं, 13वें में भी चालू है, 13वें वाले को सातावेद्य का बंध है और वो 13वें तक ही है, 14वें वाले को नहीं होता, तो यहाँ एक ही विच्छित्ति है। तो इस तरह से इसको कैसे गिनेंगे? 16, 25, 0, चौथे वाले को 10, 4, 6, 1, 36, फिर 5, 16, 0, 0 और 1। अब इसकी चर्चा भी हम पुस्तक में देखेंगे। पेज नंबर 106। देखो मिथ्या तो हमें कितनी देखी, मिथ्या तो नहीं, मिथ्या तो गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंधे की विचित्ति देखी, दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियां। उसका अर्थ क्या है? दूसरे गुणस्थान में देखो इसमें तो बंधन का कारण में मिथ्या तो कषाय वगैरह इसको गिनना है, तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से बनती है, आगे मिथ्यात्व का उदय नहीं, इसका बंध भी नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी से, तो आप पूछेंगे कि दूसरे में अनंतानुबंधी, पहले में भी अनंतानुबंधी है ना, तो उसको वहां पर कहो ना, और उसका कारण बताएंगे। देखो यहाँ सासाधन में 25 प्रकृतियां विक्षिप्त रूप होती है, मिश्र यानी तीसरे गुणस्थान में शून्य कहने से विच्छित्ति का अभाव है, बंध का अभाव नहीं कहा, बंध तो चल रहा है वहां पर, वहां कोई विच्छित्ति नहीं होती। असंयत में 10, देश संयत में 4, प्रमत्त में 6, अप्रमत्त में 1, अपूर्वकरण के 7 भागों में से पहले भाग में 2, दूसरे से 5वें भाग तक कोई विच्छित्ति नहीं है, छठे भाग में 30 प्रकृतियों की बंध से विच्छित्ति होती है और 7वें भाग में 4, अनिवृत्तिकरण में 5, सूक्ष्म सांप्राय में 16, वहां 17 प्रकृतियों का बंध था, उसमें से 16 भी बंधना रुक जाएगी, तो 11वें 12वें 13वें में एक ही सातावेदनीय बंधेगी। उपशांत मोह क्षीण मोह में शून्य यानी विच्छित्ति शून्य, संयोग केवली में 1, अयोग केवली में बंध भी नहीं और विच्छित्ति भी नहीं। तो यहाँ जो कहते कि विच्छित्ति हुई यानी बंध का अभाव हुआ, बंध का अभाव हुआ, तो ये इस कथन में 2 कथन आ रहे हैं जिसको हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी कह सकते हैं, यही बात यहाँ लिखी है 106 पेज पर नीचे। विच्छित्ति के कथन में 2 नए हैं, एक उत्पाद अनुच्छेद, एक अनुत्पाद अनुच्छेद। उत्पाद अनुच्छेद नाम द्रव्यार्थिक नय का है, इस नय के अभिप्राय से तो जहाँ अस्तित्व है वहीं पर विनाश कहते हैं, जहाँ बंध है वहीं पर विच्छित्ति कहते हैं, क्योंकि जहाँ अस्तित्व ही नहीं वहाँ बुद्धि में कैसे आए? जब बुद्धि में नहीं आएगा तब वचन से अगोचर होने पर अभाव है, इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है? अभाव कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि अभाव को जानने वाला सम्यक ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण है वे अस्तित्व रूप वस्तु की को जानते हैं, उनकी नास्तित्व रूप वस्तु में कैसी प्रवृत्ति होगी? यदि उनकी नास्तित्व रूप वस्तु में भी प्रवृत्ति हो जाए तो गर्भधब के सिंह नास्तित्व रूप है, उनमें भी सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति होगी, परंतु वह तो बनता नहीं है, इसलिए जहाँ अस्तित्व पाया जाए वहीं पर नास्तित्व कहना योग्य। एक कथन के भेद है, हमेशा भी कहते हैं अभाव कब कहेंगे? जब भय होगा तब अभाव कहेंगे, पहले तो था ना, जब था तब है ऐसा कहेंगे, इट इज नो मोर तब हम कहेंगे उसका अभाव होगा। ये पर्यायार्थिक नय का कथन है, द्रव्यार्थिक नय कहाँ कहेंगे? जहां पर है वहीं पर वो नहीं था तो उसका क्या भय होगा, अभाव कैसे होगा? जो सद्भाव रूप है उसी का अभाव होगा। ये कथन के भेद है, ये कोई मान्यता के वगैरह भेद नहीं है। पुनश्च अनुत्पाद अनुच्छेद नाम पर्यायार्थिक नय का है, इस नय के अभिप्राय से जहां सत्व न हो वहीं पर अभाव कहते हैं, क्योंकि सद्भाव के होते हुए अभाव का विरोध है। पुनश्च सद्भाव के निषेध बिना अभाव होता नहीं, ऐसा भी नहीं कि कर्मों का नाश नहीं है, क्योंकि घाती अघाती कर्म सर्वत्र नहीं पाए जाते। अभी उसकी जो न्याय की दृष्टि से चर्चा है, अभी हम नीचे के 2 लाइन पढ़ते, देखो स्यादवान मत में मिलन, ऊपर से 3 नीचे 7वीं लाइन, स्यादवान मत में दोनों नए अविरोधी है, नहीं उसको कहते हो तो सापेक्ष होते हैं, अविरोधी होते हैं, न कोई विरोध नहीं है वहां पर। कथन में अपेक्षा वश अलग अलग क्या कहने, अपेक्षा से उसका कथन हो जाता है। इसलिए यहाँ विच्छिन्ति के कथन में द्रव्यार्थिक नये रूप उत्पाद अनुच्छेद की अपेक्षा कथन है। उत्पाद अर्थ विद्यमान अस्तित्व, उसका अनुच्छेद अर्थात दूर होना, जिसमें नहीं है ऐसा द्रव्यार्थिक नये है। यानी यहाँ नये की अपेक्षा विच्छिन्ति कहाँ कहने में आती है, जहां पर बंद हो रहा है उसी गुण स्थान में उसकी विच्छित्ति कहने में आती है। अपना सिंपल अर्थ है इसका, जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया है। अभी हम सब यहाँ देवलाली में इकट्ठे हो गए। आप कहाँ से आए? बेंगलोर से आए। आप कहाँ से आए? वाशिम से आए। हमारी बहन नाते पोते से आई, कोई चित्तौड़गढ़ से आए, है ना। और कहाँ कहाँ से आए आप? भोपाल से आए। तो सब हम यहाँ मिले देवलाली में। तो हम बाद में पूछा आप कहाँ बिछू रहे? बोलो भाई आप बम्बई से आए ना, सब लोग कहाँ बिछू रहे? हम देवलाली। अरे देवलाली में बिछुड़े कहाँ, देवलाली में तो साथ में थे, वहाँ तो इकट्ठे थे। ये जैसा कथन है जहाँ थे वहीं पर बिछुड़े ऐसा कहने की पद्धति है, वैसे जहाँ पर बंद है वहीं पर विच्छिन्ति होती है, ये कथन का कहने की ऊपर विवक्षा जिसको कहेंगे। द्रव्यातिक उत्पाद अनुच्छेद कहेंगे। यही यहाँ उदाहरण भी दिया हूँ। अभी 108 पेज पर आते हैं। ये 16 प्रकृतियां जो मिथ्यात्व में ही बनती है, आगे के गुणस्थानों में नहीं बनती, ये कौन सी है उसकी यहाँ चर्चा। देखो अपने प्रायोगलब्धि के, अपने पंचलब्धि का विषय हुआ था बहुत बार, ऐसे हुआ था समेत के प्रकरण में भी हमने किया था। तो वहाँ प्रायोगलब्धि में क्या होता है, प्रथमोक्षम समेत के पहले कितने ही प्रकृतियां बंधना रुक जाती है, जिसको बंधाक्षरण में लिया। परंतु उसमें कितनी ऐसी प्रकृतियां हैं कि जो समय तो आने पर फिर वापिस बनना चाहते हैं, अभी कुछ काल के लिए रुकी है। परंतु मिथ्यात्व का बंध तो अंतिम समय तक होता है, अनिवृत्ति कर्म के अंतिम समय तक। वो कब रुकता है? जाके समय को होने पर वो रुकता है। जो समय दृष्टि होने पर फिर हम इसको कहेंगे इनकी बंध की विच्छित्ति हुई। कुछ काल के लिए जो रुका है उसको बंध विच्छित्ति नहीं कहेंगे। हाँ, जैसे जो वहां आता है ना हास्यरथ शोक वगैरह, वो शोक और वो अवधि नहीं बन रही कुछ काल में, समित्व के सन्मुख अवस्था में वो अवधि शोक नहीं बन रही है, वो बाद में फिर बंधेगी। उस कुछ समय के लिए वो तो रुकी है, वो अस्थिर वगैरह जो अशोक रुकते हैं ना उसमें से, वो नहीं बंधेगी अभी कुछ काल के लिए। समय दर्शन होने पर उक्षम समित्व के काल में भी बंधेगी वो। उसका अर्थ क्या, उसका बंध विच्छित ही नहीं हुई, नहीं अबंध भी नहीं हुई थी वो कुछ काल तक। वो प्रायोगिक लब्धि के करण लब्धि के प्रकरण में कुछ काल तक वो बंध के रुकी है। उसको अपसरण कहते पर उसको विच्छित्ति नहीं कहते। विच्छित्ति शब्द आता है परंतु उसका सही अर्थ ये है अपसरण हुआ है, कुछ काल के लिए रुकी है। जैसे अति विशुद्धि की अवस्था है वहां तो साता वेद नहीं बन रही, पर समय तो होने पर साता का तो दोनों का बंध चालू हो जाएगा। कुछ काल के लिए रुकी है, कुछ प्रशस्त प्रकृतियां वहां अंतर्भूत के लिए नहीं बन रही है, वो कायम के लिए बंद रुका नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो ये 16 प्रकृतियां कौन सी है, मैं एक एक नाम लेती हूँ, आपको रिपीट करना है क्योंकि ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। सुने तो सही, याद नहीं होगी तो चिंता की बात नहीं, याद नहीं होगी तो कोई चिंता की बात नहीं है, समझने की आवश्यकता है। देखो मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सैनन, एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, नरगति नरगत्यान पूर्वी और नरकाय। कितने हुए? 16 हुए ना। देखो क्या गया, मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद और असंप्राप्त सुपाटी का सहन, ये 4 हो गए। उसके बाद एकेंद्रिय स्थावर और आतप, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, नरगति नरगत्यान पूर्वी और नरकाय। ये 16 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में बनती, आगे नहीं, इनकी बंध विच्छित्ति हुई। अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। देव जो है देवगति के, जो नरगति का बंध ही नहीं करते हैं, जो सूक्ष्म साधन अपर्याप्त का बंध ही नहीं करते हैं, उनके विच्छित्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बंध योग्य में कम गिनेंगे, उनकी बंधने वाले में कम गिनेंगे, फिर उसमें से विच्छित्ति कहेंगे। समझ में आते हैं बस? तो उनके लिए विच्छित्ति कौन सी, वो एक इंद्रिय स्थावर तक का बंध कर सकते हैं, उनके लिए विच्छित्ति वहां तक ही कहेंगे। इसलिए ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ हमेशा जो कुछ विशेष प्रयोजन सहित यह ऑर्डर, यानी कैसे भी हम आगे पीछे कह सकते हैं 16 नंबर पूरा करते हैं, परंतु अलग अलग गतियों की अपेक्षा भी उसमें। अभी नारकी जीव तो एक इंद्रिय का बंध भी नहीं करते, तो आंतक और स्थावर का बंध भी सवाल नहीं। तो उनके लिए वो जब आगे के गुणस्थान में जाएंगे तो उनके कौन सा बंध का अभाव हो जाए, मिथ्यात्व का, हुंडर संस्थान का, नपुसक वेद का, असंप्राप्त सपाटी का, उनके लिए चार ही कहेंगे। ये तो भेद हम बाद में विचार करेंगे, पर ये अपेक्षा बाद में हमको लेनी है। ये तो इन जनरल बात कर रहे हैं, जहां कहीं भी हो चारों गति उनकी अपेक्षा, उसकी बात यहां हम ले रहे हैं। नाना जी उनकी अपेक्षा बात कर रहे हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि को ये बंधेगी, आगे की किसी भी एक भी जीव को ये नहीं बंधेगी। समझ में आती बात? फिर इसको पढ़ते देखो, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद और असंप्राप्त सपाटी का संघ, ये चार एक साथ हम याद कर रहे हैं। उसके बाद एकेंद्रिय स्थावर और आतक, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, नरगति नरगत्यानुपूर्य नर। इसलिए हमने आपको पूछा था वो श्रेणी के राजा समय दर्शन के बाद उसने आयु बांधी कि नहीं बांधी। पहले नरगति बन चुके थे, अब समय दर्शन होने के बाद ना नरगति बनती है ना नरकायु बनती। देखो नरगति में जाना उनका निश्चित था। हाँ स्त्रीवेद दूसरे गुण स्थान तक बनता है, स्त्रीवेद का बंध दूसरे गुण स्थान तक है। समय दृष्टि हो जाएगा तो डायरेक्ट उसके लिए 16+25 इतना बंध रुक जाएगा। तो हम कहेंगे समय दृष्टि जीव न स्त्रीवेद को बांधता है ना पुस्तक वेद को बांधता है, ये 16-25 को इंक्लूड करके कहेंगे। क्या मैं दूसरे में बन सकता है, इसलिए इस 16 में उसको नहीं गिना है। 16 तो इतनी यही लिमिट है उसकी। अभी जब से समय इन्हें समय दर्शन प्राप्त हो गया, पहले से कोई दूसरे में नहीं जाता है, परंतु दूसरे में नहीं बनती है इसलिए पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कहते हैं। ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ बंध विच्छित्ति करके दूसरे में गया, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कोई पहले से दूसरे में जा ही नहीं सकता। दूसरे गुणस्थान वाले गिरकर पहले में आते हैं। जो दूसरे गुणस्थान वाला है उनको इन 16 का बंध नहीं हो रहा था, वही दूसरे वाला जब पहले में आ गया तो उन 16 का बंध उसको चालू हो गया। इस तरह उसको हाँ श्रेणी के राजा की मैंने बात यही इसीलिए पूछी थी ना आपको, कि समय दर्शन हुआ उसके बाद उसने आयु का बंध किया होगा कि नहीं किया होगा। आयु का बंध पहले नरकायु का हुआ था ना, और बाद में समय तो प्राप्त किया था, तो आयु घट गई बाद में, सही भी हुआ। अभी वो आयु का बंध नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एक नरकायु बांध दिया तो दोबारा नरकायु बांधनी पड़ेगी। अब समय दृष्टि तो नरकायु बांधेगा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोबारा उसने आयु का बंधन नहीं किया। 5 मिनट है कहते हैं, इसलिए 8 बार आयु बांध के दिखा ही सके। देखो आयु बंध का ऐसा नियम है, मनुष्य और तिर्यंश कर्मभूमि के बाद है, उसको त्रिभाग में आयु का बंधन होता है। आयु के बंध के योग्य जो परिणाम है वो त्रिभाग में होता है, उसको अवकर्ष काल कहते हैं। देवों में, नारकियों में, भूभूमि में अंतिम 6 महीने बाकी है, तब फर्स्ट टाइम आयु का बंध हो सकता है, वहां हो या ना हो, फिर वो 6 महीने का त्रिभाग त्रिभाग करते जाना, वो भी 8 बार करके आयु का बंध कर सकते। किसी ने एक बार आयु बांध दी तो एक बार बांध दी, फिर जो रिमेनिंग काल है उसका त्रिभाग करो, उसमें फिर उसका आयु बंध का अवसर आ सकता है, वहां वो आयु का बंध कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है दोबारा, फिर त्रिभाग का त्रिभाग बाकी रहा, तो फिर तीसरी बार फिर उसका और त्रिभाग, फिर चौथी बार, ऐसे आयु बंद के अवसर 8 बार आते हैं। मेजॉरिटी तो एक ही बार आयु का बंद कर लेते हैं। ऐसे भी कितने जीव हैं कि जो 2 बार में, पहली बार करेंगे, आठवीं बार, पहली बार या छठी बार, कभी भी हो सकता है, 2 बार उसने मिलकर आयु का बंद किया। किसी ने 3 बार किया, किसी ने 8वीं बार किया। ऐसा नहीं कि आयु अलग अलग बंधेगी। जिस गति संबंधी आयु बंधी है वो तो अभी नक्की है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, स्थिति हीनादि बन सकती है। मान लेते हैं पहले 2 सागर की आयु बांधी है, पहली बार देवायु बांधी उसने, और बाद में 10 पल्ले की बांधी, मान लेते हैं, तो क्या होगा? वो जितने निषेक बनेंगे उसे में वो पल्ले प्रमाण, जो जितने 2 पल्ले बन रही तो उसमें तो मिल जाएगी। अभी अभी 100 बांधी तो ज्यादा बांधी तो जितनी मैक्सिमम होगी वो कंसीडर की जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले 1 सागर बांधी बस बाद में 4 सागर बांधी तो मिलकर 5 सागर नहीं होगी।
पैरेलल चलेंगे क्या?
हाँ,
पैरेलल उदय चलेगा उनका।
पैरेलल उदय नहीं, वो इकट्ठा, वो सत्ता का निषेक एक हो जाएगा, उसकी कोई अलग अलग निषेक नहीं होगी। नहीं तो पहले स्वर्ग की भी बांधी, किसी स्वर्ग की भी बांधी, पैरेलल उदय में कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं कुछ होगा। उसके निषेक जो है, जिसकी जो स्थिति वाले है, वो आपस में मिलेंगे, वो सत्ता का निषेक कहलाएगा। वो सारे परमाणु उसमें डिस्ट्रीब्यूट है।
लास्ट में फाइनल आपका कम या ज्यादा वो लेके?
नहीं नहीं, जो मैक्सिमम है वो
ज्यादा नहीं।
आपने आप बोले नहीं कि मेरे 2 सागर था उसका, फिर बाद में जब मैंने फिर से बांधा सिर्फ 10 पल्ले ही रह गए, तो फिर वो सारे 10 पल्ले?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। वो घट जाती है तो ही हो जाएगा, वो घाता है उसको, वो बात अलग है, वो परिणाम उसे करना है। ये नई आयु अगर बढ़ना है, आयु में उत्कर्षण होना है, तो नए बनने की आवश्यकता। पुराने बंदी है ना, और नई भी बंदी, तो कौन सी कंसीडर होगी? जो नई बंदी है वो
पुराने वाले।
अभी सालों की बात छोड़ो, 100 साल की बात है। किसी ने 50 साल की बांधी और दूसरे टाइम ने 60 साल की बांधी, तो 50 साल के निषेक एक एक समय में थे, अभी 60 साल के निषेक, वो तो इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसकी स्थिति में स्थिति मिल जाती है, निषेक में निषेक, तो 60 साल वो जिएगा, उसकी वो आयु कंसीडर होगी। और कभी पहले 60 साल की बांधी, बाद में 40 साल की, तो 40 वाले उसमें इंक्लूड हो गए, परंतु 40 और 60 मिलकर नहीं होगा। हाँ, 60 ही रहेगा, परमाणु की संख्या बढ़ गई उस बस इतनी बात, उसमें कोई किसका सेवा का कोई करने रुकता है क्या वहां पर लिखने वाला है? और वो त्रिभाग भी समय में गिनना है, और वो समय कब से शुरू हुआ? हमारा विरगति के पहले समय से। और वो त्रिवाहिनी कितनी आयु एग्जैक्ट बांध कर आया है, और वो एग्जैक्ट समय में 3-4 समय का भी डिफरेंस होगा तो त्रिभाग नहीं कहलाएगा। समझ में आती है? और आयु का बंधन अंतर्मुख तक ही होता है, वो त्रिभाग के पहला अंतर्मुख, बस उतने में उतने जितने सारे आयु बांधने उसके परमाणु इकट्ठा करता है। ये आयु के परमाणु इकट्ठे किए उतने काल में उसने, बस इतना उसका अर्थ है।
रेनिक राजा की
देखो, उसने आयु बांधी 33 सागर के जितने समय उतने निषेक बने, अभी उसको घातायुष्क कहते, परिणाम के कारण बंधी हुई आयु का घात होना, उसको घातायुष्क कहते। तो उसके 33 सागर के जितने परमाणु थे वो तो खिर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका उदय कब होगा? नरक में जाने पर। अब उस आयु के परमाणु का क्या होगा? 33 सागर के निषेक नीचे आकर 84,000 वर्ष के निषेकों में उसकी रचना होगी।
इसके लिए सम्यक दृष्टि आवश्यक है?
जरूरी नहीं, मिथ्या दृष्टि भी घातायुष्क कर सकते।
घातायुष्क
हो सकता है, देवायु में और नरकायु में विशेषता घटित करते हैं ना, क्योंकि वो सागरों की, ऐसा भी आता है ग्रंथ में कि 33 सागर की आयु बांधी, बांधने वाले तो मुनिराज होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्या तो में भी चले जाए और 10,000 वर्ष की आयु बना दे दे, इतना घात किया, यानी जो उत्कृष्ट आयु बंध का अंतर कहते हैं ना, उसमें ये बात होती है। उत्कृष्ट आयु बांधी और फिर उसने वो घटाई, और फिर दोबारा 10,000 वर्ष का देव होकर फिर मनुष्य होकर फिर उत्कृष्टारी बांध, ये भी हो सकता है इसका नेक्स्ट वर्ल्ड में, उसमें ये बातें बैठी हुई है। अभी समय हो गया अपना, बाकी प्रश्न है तो दोपहर में चर्चा करें। बोलो 2400 भगवान।